वैष्णव का संग पा करके, यहाँ के जो जानने वाले थे उनका संग पा करके और सब। अभी जो उद्यानी के पास में एक बड़ा भारी झील था, बहुत बड़ा है। असल में कालिया दह यहाँ है, या हो सकता है कल्प भेद हरि कथा सुहावा, कल्प भेद। किंतु यहाँ के हमने बड़े बड़े लोगों से सुना है, संतों से भी सुना है, यहाँ के प्राचीन लोग हैं, प्रामाणिक व्यक्तियों उनके मुख से सुना है कि यहाँ पर काली हरद था, बहुत विशाल। उसका था नहीं था पानी का, और मीलों लंबा चौड़ा था, एक दो मील नहीं, मीलों। जमुना का वो हरद है, जमुना से मिला हुआ, जमुना से अलग, कभी जमुना नदी होगा वो। और उसमें अथाह पानी था। ब्रिटिश गवर्नमेंट आज से करीब करीब 100 वर्ष पहले या 150 पहले, वारन हेस्टिंग्स या कर्नवालिस इत्यादि के समय में देखा, यहाँ तो प्रचुर पानी आया और यहाँ पर सिंचाई नहीं होती है, खेत नहीं है, पैदावार नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर इसी से सिंचाई की व्यवस्था की जाए, कैनल निकालेंगे और अथाहंत पानी है और इसको ले चलेंगे और जा करके हम कहीं मथुरा इत्यादि की तरफ में कैनल में मिला देंगे। उन लोगों का ऐसा ही प्लान था। सब मशीन तेसीन बड़ी बड़ी सब आई और उसमें बिछा दिया गया। दूसरे दिन देखा क्या, जो एकदम वहां पर पानी नहीं है, सब भरा पड़ा है, दल दल बन गया, इसके बाद में सूख गया। क्यों हुआ? धीरे धीरे ये कृष्ण की क्रीड़ा भूमि लुप्त तो होती चली जा रही। स्थूल दृष्टि वाले हैं ना, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए इन सब स्थानों को पाए गांव इत्यादि होते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अंजनौ के स्थान है और सब ये बड़े सुंदर सुंदर ये सब नगर बसे हुए हैं। बद्रीनाथ जी ने बसाया कृष्ण की उन लीला परक नामों को देकर के। यहाँ के लोग नहीं जानेंगे जैसे ये कौन सा गांव किस लिए उसका नाम हुआ। अभी हम लोग के साथ में प्रिंसिपल साहब आए हुए हैं, उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये था, जो यहाँ पर खेल किया, आंजल लगाया आंखों में, राधा जी को श्रृंगार किया, नंदगांव उन्होंने जन्म लेकर, नंदगांव उन्होंने बहुत तरह की खेल की है, वहाँ पर पावन सरोवर है, वहाँ पर हम गए थे जहाँ पर कि कदम्ब टेर है, यहाँ पर हम उद्धव जी के क्यारी में गए जहाँ पर गोपियों से उनका विरह संवाद हुआ, इसमें क्या शिक्षा है? उन्होंने पूछा। मैं उस समय उनको बतलाया नहीं, आज अच्छा पीछे बतलाएंगे। इस पर खूब अच्छी तरह से विचार करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए। इसको समझने के लिए पहले गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, और जब गीता समाप्त होगा तो वेदों का अध्ययन करो। वेदों का अध्ययन करने के लिए व्याकरण के साथ साथ में निरुक्त भी जरूरी है। निरुक्त नहीं होने से कुछ नहीं आएगा। निरुक्त जब पढ़ने जाएंगे उसके 6 अंग हैं, षडंग वेद है। जो एक जन्म की बनाए जाए 10-20 जन्म लग जाएंगे। षडंग किसको कहते हैं?
छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प,
व्याकरण हुआ, छंद, छंद का ज्ञान है। जैसे गायत्री एक छंद है ना?
अनुष्टुप, विष्टुप, दिष्टुप।
गायत्री माने तीन बार, तीन चरण होते हैं ना? तीन चरण इसमें है। एक अनुष्टुप होता है 4 चरणों वाला, रामायण ये, वाल्मीकि रामायण ये अनुष्टुप छंद है। ये कुछ होते हैं, कौन सा?
दिष्टुप है, अनुष्टुप है, मुंडा कांत है, बसंत तिलक है,
ये सब बहुत तरह के। ये सब इसका ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, शब्द का ज्ञान होना चाहिए, अमरकोश इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए, याद रखने चाहिए सब। करोना तक जीवन भर लग जाएगा। तो ये षडंग वेद होना चाहिए।
वो एक एक शब्द के नीचे ना लाइन दी हुई है, उस शब्द का उच्चारण कहाँ पे जोर
दीर्घ प्लूस, अन्य तो उल्टा का पुल्टा हो जाएगा। लेना का देना पड़ जाएगा, वेद समझ में नहीं आएगा। ये ओंकार पहले कृष्ण कहते हैं गीता में, जब मैं ओंकार हूं, ओंकार का विस्तार है गायत्री, ये तीन चरणों में है। इसी का विस्तार भागवत है। इस तरह से ये सब इसकी चीजें हैं। वेदों में भी चार विभाग कर दिए गए, उसमें भी उपनिषद एक है जो सार भाग है। कोई अरण्य है, अरण्यक, उसमें कोई यज्ञ का विभाग वाला है, होता हवन इत्यादि। कितने प्रकार के भेद हैं, इनको समझ लेना बड़ा भारी कठिन है। ये सब आने से तो शिक्षा कुछ कुछ समझ में आएगी। शिक्षाएं दो प्रकार की हैं कृष्ण की लीलाओं में। गीता की शिक्षा क्या है? गीता की शिक्षा ये है, हमारा जन्म मरण नहीं है, हम नित्य सनातन है। शरीर कपड़े के समान है, आज न कल फटेगा, तैयार भी हुआ फटेगा भी, ऐसे ही शरीर का है। इसलिए आत्मा को जानने की चेष्टा करो। नैनं छिदन्ति शास्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेदयन्तापो, सुसुपा मारुत। ये आत्मा है, अजर अमर नित्य सनातन है। वो कैसा है? आनंदम अयम ब्रह्म इत्यादि, अयम आत्मा ये आनंदमय है। आनंद ही इसका धर्म है, स्वरूपगत इस आत्मा का, और शरीर नश्वर है। कैसे जानेंगे? प्रचोदयात प्रच उदयात, गायत्री का ये मंत्र। उनके शरणागत होकर के उनसे प्रार्थना की जाएगी कि ओ प्रभो आप भर्गो देवस्य, देवस्य भर्ग। देव की जो शक्ति है, भर्ग माने तेज शक्ति, वो हमारे हृदय में उदित हो, जिससे कि ये सब शिक्षाएं हमारे हृदय में अनुभूत हो और इसकी अनुभूति कर सके। सही जाने ये जनाए। इसलिए कृष्ण ने कहा, जैसे अपने मन से तुमको कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ सकेगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता परमार्थ राज्य का पहला पुस्तक है, पहली पुस्तक है। इसमें अक्षर का ज्ञान है। आज अभी थोड़ा सा अक्षर के संबंध में बतला रहे हैं। ओम इति अक्षरम, जो कभी विनाश नहीं होता। आज जो विनाश होता है वो अक्षर वस्तु है। इस तरह से चलते 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 जब ये गीता समाप्त हो जाएगी, मैं इस जगत का कुछ नहीं हूं, हम रिफ्यूजी होकर के इस जगत में आए हैं, हमारा जन्म मरण नहीं है, हम नित्य सुख और शांतिपूर्ण रहने वाले भगवान का अंश हैं, तब आत्मा की क्रिया आरंभ होगी। अब यही आरंभ होता है भागवत, जहां पर गीता शेष हुई आरंभ हुई भागवत। भागवत में पहले संसार से वैराग्य की बातें कपिल देव ऋषि इत्यादि के संवाद में आया, फिर वो नगरी वाला पुरंजन का उपाख्यान, इस जगत से हम सुखे नहीं होते हैं और सुख चाहिए, अपनी स्त्री को भी छोड़ करके हम सुख खोजते हैं, उसने पुरंजन उपाख्यान दिखलाया। इन सब त्याग वैराग्य इनसे आ जाए और भगवान के प्रति कुछ थोड़ी सी भक्ति हो, तब ये फिर दशम स्कंध आया। दशम स्कंध में प्रारंभ से ही कृष्ण की लीलाएं हैं, उसमें कुछ शिक्षाएं हैं। जैसे उतना पद सबसे पहले उतना का पद किया, क्या इसमें शिक्षा है? इस पर विचार कीजिए। उतना को संधि से विच्छेद कर दीजिए, दो भाग कर दीजिए, पूत ना जो पवित्र नहीं है। कौन पवित्र नहीं है? जिसमें ये शरीर में ही जिनका आत्मभाव है मैं हूं, वो सब अपवित्र हैं। जिनका ये शरीर में अहम भाव दूर हो गया जो मैं नहीं हूं, वो पवित्रता यहां से आरंभ हुई है, अभी पवित्रता पूरी नहीं हुई, आरंभ हुई। इसलिए पूतना कपट वेश बना करके देह में आत्मभाव होने के वजह से मैं कृष्ण को मार डालूंगी, भक्तों को मैं मार डालूंगी। 7000 हाथियों का बल रखती थी और योग विद्या में इतनी निपुण थी जो शरीर को बदल सकती थी, इतनी कुरूपा, इतनी लंबी चौड़ी, और बन गई कैसे? एक देवी के समान परम सुंदरी बन गई और कृष्ण को झट गोदी में उठा लिया। उठा करके कहा, जी बेटा तुम उनकी उनके बेटे नहीं हो, ये तुम्हारी मैया होने योग्य नहीं, मैं तुम्हारी मैया हूं। और गोदी में ले लिया और स्तन पिलाने लगी। स्तन में कालकूट 20 लेकर के आई थी, मैया का वेश बनाया, कृष्ण को गोदी में ले लिया और स्तन दिया। अपने स्तन को जैसे पंप करते हैं ना, ऐसा करके उसके 20 उसमें लगाया। कृष्ण ने आंख बंद कर दी। अच्छा तुम मैया बन करके आई है, देखा देखूंगा नहीं तो कैसे तुम मरेगी? मैया का बीज बनाया, तुम्हें मार कैसे दूं? इसलिए स्तन में मुख लगाया, 20 तो चूसा ही और साथ साथ में किया क्या, उसके प्राणों को भी चूसा और उसका 20 जीतना था। देहात्म भाव और जीतना, कृष्ण को मारने के लिए हिंसा द्वेष कलह सबको निकाल दिया और वो परम पवित्र बन गई। मरने पर उनको जला गया तो परम सुगंध निकली। इसमें क्या शिक्षा है? शिक्षा क्या है? ये तो कृष्ण की लीला है, शिक्षा भी इसमें है। हम सभी अपवित्र हैं, देह के मैं ये शरीर में आत्मा का भाव रखते हैं, ये मैं है। इसी के सुख से दुखी, इसके सुख से सुखी, इसी को पालन पोषण करने के लिए हमारा इतना प्रयास होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या राष्ट्र संघ के बड़े बड़े सब विद्वान हो, बस इसके अतिरिक्त और कोई विचार, आत्मा का विचार उनमें नहीं है। मरने के बाद कहां जाएंगे, आत्मा कहां से आती है, क्यों जीव दुखी है, ये विचार नहीं करते। इसलिए सभी शूकर जैसे हैं, पशु हैं, धर्म ही नहीं ना, देखने में मनुष्य जैसे दो पद वाले, सूरदास कहते हैं सिंह और पूंछ रही ऐसे जानवर हैं। शिक्षा इसमें रही। कृष्ण ने इधर तो उसका सम निकाल लिया, दूध दूध तो था नहीं, 20 पान किया, कपटता दूर कर दी, देहात्म मान दूर कर दिया और उसको धात्री उचित गति गोलोक बैकुंठ में दे दी। ये प्रधान चीज है, गोलोक बैकुंठ में उसकी गति दी, नहीं तो कोटि कोटि जन्मों तक संसार में घूमती। इस लीला के द्वारा दिखलाया, साधुओं का वेश, मैया का वेश बना करके भी कोई जाए भगवान के निकट, जैसे भी पहुंचे भगवान उसकी कपटता को दूर कर देते हैं, आत्मज्ञान के साथ साथ में अपनी सेवा भी प्रदान कर देते हैं। ये कृष्ण की बड़ी भारी दया है, अहेतु की दया इसको कहते हैं। बिना किसी कारण के वो नहीं चाहती, वो चाहती है कि हमारा स्तन छोड़ो, और कृष्ण पकड़ रखे हैं। 60,000 बल वाली उतना कुछ भी नहीं कर सकी, नहीं छुड़ा सकी। ये इसमें एक शिक्षा है, किंतु बहुत सी लीलाएं हैं जिनमें शिक्षा खोज करके नहीं पाएंगे, वो लीला ही लीला है। तत्तु लीला कई लीला। गोपियों से के साथ में उन्होंने जो रास किया या नंदगांव की जो लीलाएं देखी उनमें क्या शिक्षा है बतलाइए, तो क्या शिक्षा है? वो तो अपराकृत प्रेम की लीला है, वो शिक्षा से बहुत ऊपर उठ गई है। जहां तक पीला वर्त का धैनु का सुर का वध है इत्यादि, ये सब नैमित्तिक लीला है, इसमें कुछ शिक्षा होगी। इसलिए कृष्ण की लीलाएं दो प्रकार की हैं, एक नैमित्तिक लीला और एक नित्य लीला। गोपियों के नंद बाबा के साथ में उनका व्यवहार, यशोदा मैया के साथ में व्यवहार, उनका ये बंधन दामोदर लीला इत्यादि, हरास इत्यादि हैं। यहाँ पर सिर हरण किया, यहाँ पर खेले, रामघाट में रास किया, बिहार वन में बिहार किया, ये क्या शिक्षा है? ये नित्य लीला है, इसमें राधा कृष्ण का प्रेम ही बढ़ता है, उनकी सेवा होती है दोनों की परस्पर। इसलिए इसमें से शिक्षा निकालने की चेष्टा मत करो, यदि कुछ है शिक्षा उसका कोई कारण नहीं है। एक बच्चा छोटा सा मिट्टी का घरौंदा बनाया और फिर उसको पैर एक तोड़ दिया, क्या कारण है? कोई है कारण इस खेल में? कोई कारण है? कोई कारण?
मर्जी।
अब ये कर रहा वो कर रहा, उठ करके चल दिया, उसको तोड़ करके बिगाड़ दिया, बड़ी परिश्रम से किया और उसको तोड़ दिया। यही पर ब्रह्मा आनंदमय है और उनकी आनंदमय के ये सब कायद इत्यादि है, इसमें कोई मत देखो, क्योंकि वो आनंदमय है, रसो वैसा और रसस्वरूप है। नैमित्तिक लीलाओं में कुछ शिक्षा जैसे कंस को मारना इत्यादि है, धेनुकासुर का वध है, इसमें क्या है? गधे को वध कर दिया, अज्ञानता को दूर कर दिया, ये है सब कुछ शिक्षा है। गधे के संबंध में मैं बतलाया था, वहां तालवन में बतलाया था, गधे होते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, भगवान की सेवा का ज्ञान नहीं है, ये संसार को लेकर के पड़े हैं, स्थूल भाव में चलते हैं, ऐसे को बलदेव जी ने गुरु रूप में उसका वध किया। यहाँ पर शिक्षा है, किंतु गधों को मार करके क्या किया, उनकी क्या गति हुई? क्या गति हुई? मोक्ष दे दिया, जो उन गधों को भी मोक्ष दिया, जो कि बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मवादी अम्ब्रह्मास्मि सप्तमसि सर्वम खलिदम ब्रह्म इत्यादि कहने वाले लोग कोटि कोटि जन्म नहीं पाते, चुटकी बजाते ही उनको ये मुक्ति दे दी, आवागमन बंद कर दिया। ये सब जो लीलाएं हैं इधर की, जो कि नित्य लीलाएं हैं, वो प्रेम का आस्वादन है। प्रेम का आस्वादन करने के लिए और जीवों को उसमें लोभ उत्पन्न कराने के लिए हम भी कृष्ण लीला में इसी प्रकार से गोपियों जैसी, यशोदा मैया जैसे कृष्ण को प्यार हम करती, ये जीव का स्वाभाविक स्थिति है। इसमें शिक्षा से बहुत ऊपर चला गया और नैमित्तिक लीलाओं में क्या है उसमें कुछ शिक्षाएं भरी पड़ी है। कोई भी नैमित्तिक ले लो, जैसे कंस ही, कंस वध उन्होंने किया, क्या इसमें शिक्षा? अपने गुरुजनों को देख करके उनका अपमान मत करो, उनकी निंदा मत करो, उनकी खिल्ली मत उड़ाओ। ब्रह्मा जी बैठे हैं, जगत का सृजन कर रहे हैं, एक परम सुंदरी नवजौवना सोलसी एक कन्या को उन्होंने बनाया और देख करके एक तक देखते ही रह गए, इतनी सुंदर खूबसूरत। मरीची के लड़के बैठे थे, छह बैठे थे, उन्होंने देख करके हंस दिया, अरे देखो तो इसकी लड़की आखिर तो है नहीं, ये लड़की को बनाया और इसको देख करके काम भाव हो गया, बस हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा जैसे ऐसे ही हंस दिया, कुछ समझा बुझा नहीं, अभिसंपात कर दिए, जाओ
अपने पिता के हाथों,
अपने पिता के हाथों से ही तुम्हारा वध होगा, दूसरा जन्म लेगा उसमें तुम्हारा जो पति पिता बनेगा वही पिता ही तुम्हारा वध करेगा। वही कालनिमी हुआ, कालनिमी और इनके ये 6 बच्चे हुए, 6 को उन्होंने काट दिया। फिर वही कालनिमी कंस हुआ और वो बच्चे फिर षडगर्भा देवकी के 6 पुत्र हुए। और कृष्ण का जहां जूठा स्तन मैया का यदि पान कराया द्वारका में, देवकी ने कहा बेटा हमारा एक इच्छा पूर्ण कर रहा है, मथुरा में ही, मथुरा में कारागार से जबकि छूट गए और विशेष करके सांदीपनी मुनि के यहाँ से जब लौटे तब कहे तुमने गुरु पुत्र को बचा करके ले आए, जीवन उसको कितना दिन पहले मर गया था और तुमने उसको लेकर के इनको दे दिया, वही मधुमंगल जी हैं, तो फिर हमारे पुत्रों को तुम क्यों नहीं ला सकते हो, तुम हमारे पुत्रों को ला दो। कहे ठीक है, उन बच्चों को कहाँ कहाँ से खोज करके ले आए, कालपुरी या जमपुरी या कहाँ से,
महाकालपुरम
से लेकर के आए, मैया को दिया, मैया के स्तन में दूध आ गया। कृष्ण ने एक बार मथुरा से वृंदावन गोकुल जाने के समय में थोड़ा सा पान कराया था, बस उसका जूठा थोड़ा सा लग रहा था और पान करते ही उनकी मुक्ति हो गई, उन्हें षडगर्भा मुक्ति हो गई।
जब कंस काल नेमी था तब भी उसने मारा था अपने बेटों को,
हाँ जब कंस जब उसके रूप में था मारा था, दूसरे जन्म में भी मारा कंस होकर के भी, वही पहले इसके द्वारा दिखाया कि अपने पूर्वों को अपने गुरुजनों को कभी दिल्लगी मत करो, आचार्य को मनुष्य मत मानो, गुरु की निंदा मत करो, गुरु की अवज्ञा मत करो, भक्तों की साधु संतों की अवज्ञा निरादर निंदा मत करो, मरेगा, ये सब इसमें शिक्षाएं हैं। और ऐसे कंस को मार करके भी उनको मुक्ति दे दी, क्योंकि एकदम आविष्ट हो गया, गाली देने में ही आविष्ट हो, कृष्ण मारेंगे हमको, मैं उसको मारूं, ऐसे करते 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 तन्मय हो गया और बस भयात कंसो, कंस भाई के द्वारा बस। तो इन सब में शिक्षाएं हैं। अब रासलीला की क्या शिक्षा है बतलाओ तो, ये आत्मधर्म है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है इसी का नाम है, पहली अवस्था में भक्ति, साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, अंत में प्रेमा भक्ति, ये जीव का स्वरूप का ये विचार है भाव। इसमें शिक्षाओं को ढूंढने की मत चेष्टा करो। गोपियों का उन्होंने अभी हम जाएंगे तीर्थघाट में, एक कोई भी सज्जन व्यक्ति होगा इसका अनुमोदन करेगा इस लीला का,
सज्जन नहीं कर पाएगा भाई,
जो लीला का अनुमोदन करेंगे उसको कोई आजकल का व्यक्ति उसको सज्जन नहीं मानेगा, जो ऐसे बदमाश हैं, ऐसा ही जिनका जीवन का लक्ष्य है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे क्विंटल कहाँ का है, क्विंटल ना क्या
क्लिंटन,
उस पर एक औरत ने केस किया अभी हाल में, अब केस चल रहा है, वह का राष्ट्रपति बतलाओ, आज विश्व का वो राष्ट्रपति समझो, सबका संचालन करता है कूटनीति के द्वारा, और उसके ऊपर में ये लंच, अब वो लोग हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर में कहेंगे ये तो भारतवर्ष में कृष्ण ने किया, समझेंगे नहीं क्या इसमें। यहाँ के बड़े बड़े विद्वान लोग भी कहते हैं, जो विद्वान मैंने ऐसे जैसे तैसे सो काल, उनके समझ में नहीं आता है, अरे ये तो स्वरूप की लीला है, उन पर अंकुश है, द्रौपदी को वस्त्र पहना करके स्वयं वस्त्र बन गए, उसके गुप्त अंगों में लिपट गए तो उसकी लज्जा नहीं गई, आया समझ में कुछ,
लज्जा बच गई,
लज्जा को रक्षा करने के लिए कृष्ण को बुलाई, हमारा और कोई नहीं है, आंख बंद कर दिया, हाथ उठा दिया, अंचल को मुख से भी छोड़ दिया, ऐसे उठा दिया, आप तो मेरे ही आप ही हैं, और कोई नहीं रक्षा कर, पांच पांडव नहीं रक्षा कर सके, भीष्म कर्ण द्रोण और नहीं रक्षा कर सके, दुशासन 10,000 हाथियों का बल से दोनों हाथों से खींच रहा है, एक झटका देने में अब खुल जाएगा कपड़ा, अब खुलने वाला ही था। जब तक शक्ति थी तब तक तो उसको बचा करके रखा, किंतु उनका बल काम नहीं किया, बस छोड़ दिया। भीष्म पितामह इत्यादि एकदम सिर नीचे कर दिए, उस समय उनका कोई सहारा नहीं। तो कृष्ण ने क्या किया, कपड़े बन गए, और कपड़े बन करके लाखों गज कपड़े निकलने लगे, लाल नील ये सब। उस समय ये कपड़ा कौन था,
कृष्ण ही थे,
कृष्ण थे, तो उसके गुप्त अंगों में लिपट गए, तो उसकी लज्जा रही कहां, लज्जा चली नहीं गई, तो उस समय तो कहते हैं कि उसकी रक्षा की। महाभारत वाले कृष्ण हमारे मान्य है, किंतु भागवत वाले जो कृष्ण गोपियों के साथ हुआ हमारे मान्य नहीं है। अरे बेवकूफों, कृष्ण जो अंतर बाहर भीतर बाहर सर्वत्र हैं, अणु अणु में वो व्याप्त हैं। अरे माता पिता को देख लो, माता पिता अपनी छोटी सी बालिका को यदि टट्टी करती तो उसको साफ कर देते हैं, धो देते हैं, तो इसका मतलब व्यभिचार हो गया। ऐसा कौन सा है जो कृष्ण का पुत्र और कन्या नहीं है इस संसार में, इस तमेव माता च पिता तमेव तमेव दर्ण सर्वम तमेव इत्यादि श्लोक इत्यादि कहते हैं, उसको तो कहेंगे किंतु इस चीज को नहीं समझ सकते, स्थूल बुद्धि वाले हैं। इसलिए इन शिक्षाओं को लेकर के जब आगे बढ़ेंगे तब श्रीमद महाभारत समाप्त हो गया। गीता माने क्या, महाभारत का एक चैप्टर है भीष्म पर्व का, उसमें कितने अध्याय, 18 अध्याय। उसमें तो कितने अध्याय हैं, उसमें से बीच का ये दिया गया। इसलिए श्रीमद् भागवत एकदम जब महाभारत जब समाप्त होगा तब श्रीमद् भागवत आरंभ हुआ। सभी लोग नहीं समझ, विद्या भागवतावधि, विद्या की परिसमाप्ति कहाँ है,
श्रीमद् भागवत।
इसलिए बड़े बड़े पंडित लोग नहीं समझ पाते हैं, समझने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे गुरुओं के पास भी नहीं जाते। इसलिए चिरहरण कर रहे हैं इसमें क्या शिक्षा है, तो हम लोग कह देते हैं भागवत में तो ऐसा लिखा नहीं शिक्षा। हम लोग कहते हैं अरे भाई कृष्ण के साथ में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, इस पर्दे को लज्जा को भी हटा दे, तुम नहीं हटाओ तो कृष्ण ही हटा ले, एक लगा दिया। अरे आत्मा में क्या पर्दा है, कृष्ण के साथ में कोई पर्दा है, हमारे जैसा वो ब्रह्म में भी काम है, उस ब्रह्म में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ द्वेष हिंसा सब कुछ नहीं है, वो निरंकुश हैं। भागवत में बतलाया गया स्वराज, स्वराज माने क्या,
निरंकुश,
निरंकुश हैं, उनका कोई अंकुश नहीं है। किस लिए क्या करते हैं, कैफियत चाहो, सूर्य को भगवान पूर्व की तरफ में ही क्यों उगने देते हैं, पश्चिम की तरफ में सूर्य के नहीं उगते, इसका कारण बतलाइए। अच्छा ये बतलाइए, जो वो शिव जी को जो फूल चढ़ता है
धतूरा,
धतूरे को का फल होता है, उसके खाने से आदमी मर जाता है, और आम का फल पा करके वो पुष्टि होता है, क्यों होता है, भगवान ने ऐसा वैश्य में क्यों बनाया, उनसे कोई पूछने वाला है, है कोई पूछने वाला,
इतनी विषमता क्यों है,
ऐसा विषमता क्यों, ये समुद्र दिन रात गर्जन करता है और चलता रहता है, कभी नहीं सोता नहीं, ये ऐसा क्यों उसको बना दिया, क्यों ऐसा होता है, कोई साइंटिस्ट ये खोज करके पता लगाए। अच्छा ये जो लकड़ी जलाते हैं आग जलाती क्यों है, और बर्फ से ठंडा क्यों होता है, ये बतलाओ तो उत्तर क्यों होता है, उसमें ऐसे ऑर्गन है, ऑर्गन कहां से आए, कौन लगाया, कहां से लगाया, इसलिए उसे कोई कहते पूछने वाला नहीं है, इसलिए स्वराट है, उनकी लीलाएं इसीलिए हैं, उन लीलाओं का कैफियत लेने वाला जगत में कोई नहीं है, जो कैफियत चाहता है दूसरे दिन हो सकता है कि मर जाए, उसको यही पता नहीं है जो मैं कल हमारा क्या होगा। इसलिए सुति सिद्धांत यह है गुरुगारी, भजिए राम सबका जबिशारी। अरे बुद्धिमान बच्चे, अब सब कामों को छोड़ करके भगवान का भजन करो, यदि सुख और शांति चाहता है भयंदित्यादिव अभिनिवेशतस्य ईशेत तस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायातो अबुधा भजन् भक्तैकजेषां गुरुदेवतात्मा। इसलिए इस विषय में जो जानने वाले हैं, अभिज्ञ हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे बंध होता है, कैसे मुक्ति होती है, कैसे भगवान का प्रेम होता है, इस सब की अनुभूति रखने वाले, समस्त शास्त्रों का तात्पर्य जानने वाले, ऐसे गुरु के पास में जाओ। तस्मात गुरु प्रपद्ये, तो वो बतलाएंगे। क्या बतलाएंगे? तुम यहाँ के नहीं हो, तुम लोग भगवान के तरफ से गोलोक बनकर रहने वाले, भगवान की विमुख होने के कारण इस जगत में आए हो। भगवान के सम्मुख जब हो गए तब तुम्हारा फिर ये ज्ञान आएगा, तब यहाँ की दशाएं दूर हो जाएंगी। गुरु को भी भगवान जैसा ही प्रेम करो, उनके प्रति भक्ति करो। गुरु देवतात्मा, गुरु को क्या समझो? देवता आत्मा समझो, और कृष्ण का भजन करो इनको ऐसा जान करके, तब तुम्हारी ये सब अबुद्धि और अविद्या अज्ञान सब दूर हो जाएगा। कृष्ण के चरणों में भक्ति, तब इन लीलाओं को समझेंगे, ये खेलंदन में क्या लीला हुई, इसकी क्या शिक्षा है, कृष्ण ने मट्टी खाई इसकी क्या शिक्षा है, गोपियों के साथ में राग किया इसकी क्या शिक्षा है, ये तब समझना है। साधन के द्वारा, विद्या के द्वारा नहीं। वो गायत्री का जैसा है ना मंत्रों का अर्थ, प्रच प्रार्थना करें जो हमारे हृदय में उदित हो, इसी का नाम है हरिनाम करना। हरिनाम एक मंत्र भगवान स्वरूप है। गुरु से ये मंत्र लेकर के पहले इसका अच्छी तरह से अनुभव करते हुए प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ में भजन करें, जप करें, उन मंत्रों को भी ग्रहण करें, और देखिए साधन भजन कीजिए। इस जीवन में भी शांति, पर जगत में भी शांति, तब ये सब शिक्षाएं समझना। कितना बजा? हाँ, 4 बजे आप लोग उठ जाएंगे, उठ करके सब तैयार हो जाएंगे, 4:30 बजे आरती हो जाएगी, 5 बजे यहाँ से हम निकलने की चेष्टा करेंगे। कल बहुत से स्थान है, और अंतिम नहीं, मैंने इस टूर का हमारा अंतिम, इसके बाद में हम लोगों को उस पार में भद्रवन, भांडीर वन, माट वन, गोकुल महावन, दाऊजी महावन, रावल, ये सब जाएंगे।
9 तारीख को जाना है।
फिर उधर में वृंदावन में चलेंगे हम लोग अंत में। तब अभी इस बार का टूर हमारा कल समाप्त होगा, हम लोग मथुरा में पहुंचेंगे, वहाँ पर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, अन्नकूट,
भैया दूज
और ये नरक चतुर्दशी एक पहले आएगी, नरक चतुर्दशी इत्यादि को पार करके के यमुना में भाई दूज के दिन में स्नान करके, और तब फिर हम लोग फिर वृंदावन में चलेंगे। आज यही तक है, थोड़ा
इसको अक्षय भट्ट कहते हैं, कोई कोई इसको भांडीर भट्ट भी कहते हैं, कोई कोई इसको श्रृंगार भट्ट भी कहते हैं। 3 नाम हुआ, अक्षय भट्ट, श्रृंगार भट्ट और भांडीर भट्ट। एक भांडीर भट्ट हम अभी पार करेंगे, भांडीर बन ही है, वहाँ पर भांडीर भट्ट है। ये यमुना के इस पार, वो यमुना के उस पार में है। इस स्थान का नाम अब काजरौल देखा जाता है,
काइरोट,
काजरौल की काजरौल था, किंतु इसका इसका तो भगा भगा काजरौल था, काजर औठा, औठा मने लगाना, काजल लगाया था किसने, और ये आंजनौ की बात जो कही थी, काजर काजल ऐठा मैंने लगाया, तो काजल से काजल औठा हो गया। और एक और चीज है, कसरत से कसरौट, और उससे काजल औठा। कसरत मैंने पहलवानी करना, कुश्ती करना। यहाँ पर राधा जी सखियों ने कृष्ण को चैलेंज दिया, आप केवल डीग मारते हैं, आपको तो श्रीदामा ने या सुबल ने ही पटक दिया, आप में कोई ताकत नहीं है। उसने कहा जी हमने बकासुर को मारा, अघासुर को मारा और बड़े बड़े असुरों को मैंने परास्त कर दिया। तुम लोग कहती है जैसे हमें बल नहीं है, तो आपने बल नहीं है और बल है तो हमारी सखी से आप कुश्ती करके देख लीजिए, तब हम समझेंगे कि आप पहलवान हैं। तो ये कसरत का, कृष्ण के कसरत करने का स्थान और यहीं पर गोपियां एकदम अपना पहलवानी वेश में आकर के और कृष्ण के साथ में लड़ गई और राधा जी ने उनको चित कर दिया और वो गिर गए। गिरने पर भी वही जो बतलाया था पहले हमने
नाम क्या है,
उन्हें कहा जब मैं जीत गया और राधा जी कह रही और सखियां कह रही जो हम लोग जीत गई। कृष्ण नीचे पड़े हुए हैं तो कहा जैसे अरे तुम तो नीचे गिरे हुए हो और तुम्हारी पीठ तो धूल में लगी हुई है, आप तुम कैसे जीत गया? अच्छा अब देखो जो तुम्हारी नाक नीचे है ना हमारी नाक है। जिसकी नाक ऊंची रहेगी वही जीतेगा। तो हमारी नाक देखो ऊंचा है और तुम ऊपर से है ना, इसलिए नाक तुम्हारी नीचे, इसलिए तुम हार गई। इसलिए ये कसरौट का भी यहाँ पर आ जाता है। यहीं पर इसी बट वृक्ष के नीचे, अब कोई कहता है ये तो देखते हैं अभी नया, तो इसके नीचे कैसे हुआ होगा? अरे वो पहले पुराना वाला जो वृक्ष था उसकी एक जटा से ये निकल आया। ऐसे ऐसे 5000 वर्ष हो गया तार नहीं टूटता। बद्रीनाथ जी ने स्मृति के लिए यहाँ पर बट वृक्ष लगाया और वही परंपरा से चलता रहा है, एक सूखेगा तो एक दूसरा आएगा। जो यहाँ पर है वो साधारण बन
गोपी जी टू डू
ऑस्टेरिटीज़
फॉर इयर्स एंड ईयर एंड देन एट लास्ट दे वेंट टू सीरघाट।
बल्लवेन्द्र नंदरंग राघवंग गंदिनी मांकुनाथ सर्वदार बिंद बंधु नंदिनी कोट बुद्धि रक्षकेन निर्मलो निचेतिता पावनेन भानुपुत्र सर्वदेव वेतितम् दस्तवेदि वर्धयस्त सर्व पाप मोचने भक्ति पूरमस्त देवि पुंडरीक लोचने।
ओम
ओम
विशाखायै
विशाखायै
नमः
नमः।
ओम कालिंद्यै
कालिंद्यै
नमः
नमः।
भक्ति प्रदे देवी
भक्ति प्रदे देवी
प्रेम भक्ति
प्रेम भक्ति प्रदे देवी
भज भक्ति प्रदे देवी
प्रदे देवी।
ओम यमुनायै नमः
पादित
पुष्पांजलिं यमुनायै नमः। तपोवन का यमुना जी हैं यहाँ, अभी तुलसी परिक्रमा के ठाकुर जी का दर्शन वहाँ पर है। हमारे समय ठाकुर जी का दर्शन करके तब बैठे और ब्रह्मचारी लोग वहाँ ठाकुर जी का भोग लगा दीजिए। आज एकादशी का द्वादशी में पारण है, बहुत से लोग एकादशी तो करते हैं पारण नहीं करते, विशेष करके ये इधर में ब्रज में या और कहीं भारत में महाप्रभु जी के संप्रदाय को छोड़ करके कहीं पारण की कोई व्यवस्था नहीं, किंतु समझना चाहिए इसी पारण के लिए दुर्वासा जी से और
अम्बरीश महाराज जी
से कुछ विचार विनिमय हुआ और दुर्वासा जी को झुकना पड़ा। समय के अनुसार में पारण यदि किया जाता है तो ठीक है, फल मिलता है। इधर दुर्वासा जी ब्रह्मर्षि थे, उनकी अवज्ञा होती है और दूसरी फल में एकादशी का फल नष्ट होता है। तो एकादशी बड़ी है न वो ब्रह्मर्षि बड़े हैं, एकादशी बड़ी है, भक्ति की जननी एकादशी है। इसलिए समय के अनुसार में दूसरे दिन द्वादशी के मध्य में ही पहले चरण में को बात दे करके दूसरे चरण में ही जरूर कर लेना चाहिए और नहीं तो एकादशी का फल दूसरी जगह चला जाता है। इसलिए जरूर एकादशी पारण विधिवत होना चाहिए। ये स्थान अरे भाई भोगो यहाँ भोग दे करके व्यवस्था करो। ये स्थान तपोवन है। मुझको पहले यह संदेह था कि गोपियों का तो चिरघाट वहाँ है, तो गोपियां तो वहाँ पर रोज एक महीने तक स्नान किया मार्ग शीर्ष में। मार्ग शीर्ष माने क्या?
अग्रहायण, कार्तिक के बाद।
ये कार्तिक के बाद में अग्रहायण के पहली तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक उन्होंने स्नान किया था और प्रतिदिन भोर में ब्रह्म मुहूर्त में वो जाती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये है यहाँ पर गांव है ना, ये गांव है इसलिए ये निकट है। तो गोपियां कौन? गोपियां जनकपुर वाली और श्रुति दंडकारण निवासी। ये जो गोपियां थी साधन सिद्धा थी और जौथकी थी, यूथ वाली एक साथ में। जनकपुर वाली भी जौथकी हैं और श्रुतिया भी जौथकी हैं। दंडकारण निवासी ऋषि लोग भी जौथक हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी एक साथ में ही आए हों। कौन कौन कल्प की कौन कौन बातें हैं कोई ठीक नहीं। विभिन्न कल्पों की बातें एक जगह में एकत्रित होकर के भागवत में आया है। जो नित्य सिद्धा गोपियां हैं या जो साधन से पहले सिद्ध हो गई हैं, श्रुतिचरी वाली हैं, उनको वो नहीं,
श्रुतिया भी तो तपस्या की है।
तो वो माने जो गोपियों के संग से सिद्ध हो गई हैं या जो नित्य सिद्ध हैं,
उन लोग नहीं।
उनके लिए यहाँ पर तपस्या की कोई जरूरत नहीं है। तपस्या माने आराधना। तपस्या और आराधना में अंतर होता है तो भी तपस्या कह दिया जाता है। आराधना माने किसी विशेष मंत्र को, मंत्र के द्वारा आराध्य देव की आराधना होती है, उनकी कृपा की प्रतीक्षा की जाती है, ये है आराधना। और तपस्या क्या है? उसका इष्ट देव कोई ठीक नहीं है, शरीर को कष्ट देते हैं। जैसे योगी लोगों की होती है तपस्या, बस उन लोगों का कोई ध्येय स्थिर नहीं है, अधिक से अधिक मुक्ति, किंतु किसकी आराधना कर में शरीर को कष्ट दे रहे हैं। ब्रह्मवादी लोगों की भी तपस्या है, किंतु भक्त लोग आराधना करते हैं, तपस्वी लोग उनको आराधना को तप में ले लेते हैं। इसलिए वो दंडकारण निवासी, श्रुतिचरी, उपनिषदचरी और जनकपुर वाली, ये सब जो हैं, ये साधन सिद्धाएं जब गोपी गृह में जन्म लिया तो वो लोग सुना, कृष्ण का रूप सुना, उनके गुणों को सुना नित्य सिद्धाओं से, किंतु अभी अच्छी तरह से संग नहीं हुआ। इसलिए उनके अंदर में यदि कुछ भावना है, माने कसाय है, कसाय माने दोष, उसको दूर करने के लिए कठोर यहाँ पर साधन तपस्या माने आराधना कर रही हैं। क्या करती हैं? मान ले कि जिनको बच्चे भी हो गए हैं, कृष्ण में अनुराग है, पीछे से नित्य सिद्धाओं का संग हुआ, और जिनको भी बच्चे नहीं हैं, अभी पति भाव है अपने पतियों में, और लोक लज्जा का छोड़ अभी छोड़ने में अभी थोड़ा सा समर्थ हैं, और कृष्ण को अंतर ही अंतर चाहती हैं, वो ऐसी जो गोपियां हैं वो यहाँ पर बहुत दिनों से यहाँ आराधना कर रही हैं। गांव से आती हैं, बारहों महीना तपस्या करती हैं। कृष्ण के प्रति नहीं, हाँ उसको भी ले लो, वो भी ठीक है। प्रियतम भाव यदि नहीं आया तो उन लोगों ने कृष्ण को प्राप्ति के लिए यहाँ पर कठोर तपस्या की। फिर अंत में एक महीना वहां गई फिर घाट पर। वो सिद्ध कात्यायनी पीठ है, इसलिए कात्यायनी के यहाँ जोग माया का पीठ है, इसलिए अपनी यहाँ पर तपस्या करने के बाद में वो वहां पर गई और वहां पर जाकर के एक महीने तक साधन किया। रोज रोज कात्यायनी जी की बालू की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करती, अर्चन करती, भोग राग सब कुछ देती। एक महीने के बाद में जब वो व्रत समाप्त होने वाला था तो ललिता, विशाखा, चित्रा इत्यादि जितनी सखियां थी, चंद्रावली प्रभृति पुरानी वाली भी, सबको निमंत्रण किया जाए। आज हमारा व्रत का ये समाप्ति दिवस है, इसलिए आप लोग भी पधारिए। तो वो लोग भी उसमें योगदान किया, योगदान करने के बाद में जो हुआ उनको वर मिला वहाँ पर कहेंगे। आज यहीं तक रहे, अभी भोग लगे। ये स्थान सिद्ध है यमुना जी, हमने देखा हमारे समय में ही तो 50 वर्ष तक यहीं पर बह रही है, इधर उधर नहीं जाती और धारा भी इधर रहती है। उस पार में ही वो भद्र वन, भंडीर वन ये सब है पास में, और इस इधर में ये सब है थोड़ा सा उधर हट करके। तो यहाँ पर बड़े बड़े सिद्ध महात्मा लोग यहाँ पर रहे हैं महाप्रभु के बाद से ही। रूप सनातन भी यहाँ पर आए हैं इन सब स्थानों में। अभी हाल में नवदीप के एक बाबा जी थे, वो केवल टाट पहनते थे, टाट समझती है ना,
बोरा,
और बड़े वैराग्य से रहते थे। यहाँ पर भी ये कमरा जो देख रहे हैं उन्हीं के लिए था, बहुत तपस्वी जैसे थे। अब वो भाव में कैसे थे मैं नहीं जानता, लोग कहते थे, हमने भी देखा। हम जाते थे कीर्तन वर्तन करके, जब यहाँ पर आए थे एक बार यही पर भेंट हुई।